नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 3 अध्याय को देखें। इसका विषय है देश में योशियाह के सुधार का आरंभ। 2 अध्याय में यिर्मयाह का पहला संदेश प्रकट करता है कि परमेश्वर ने 2 कारणों से यहूदा का त्याग किया था। उन्होंने परमेश्वर यहोवा का त्याग करके अपने देवता बना लिए थे और 3:5 इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 2-6 में निहित यिर्मयाह के संदेश व्यवस्था की पुस्तक के प्राप्त होने से पूर्व उसके सेवा काल के आरंभिक 5 वर्षों के हैं और इसी बीच यिर्मयाह के समान युवा राजा योशियाह परमेश्वर की खोज में था और अपने देश में सुधार काम कर रहा था। जैसा लिखा है कि वह मुख्यतः यहूदा देश से मूर्ति पूजा का उन्मूलन कर रहा था, क्योंकि यहूदा राष्ट्र ने परमेश्वर यहोवा को त्याग करके मूर्ति पूजा आरंभ कर दी थी। अतः आप देख सकते हैं कि इन 2 युवाओं राजा योशियाह और भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के युगल प्रयासों द्वारा देश पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। यहूदा मूर्ति पूजा में लग गया था क्योंकि वह उनका प्रचलित अभ्यास था तथा आसान कार्य भी था, परंतु इस मार्ग पर उनका जीवन स्तर गिर रहा था और वे नैतिकता के निम्न स्तर पर आ गए थे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 में, जहां लिखा है, वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? यहूदा बहुत अधिक पतित हो गया था और देश में घोर अनैतिकता छा गई थी। वह राष्ट्र वेश्या स्वरूप था, तथापि परमेश्वर उनसे लौट आने का आग्रह करता है, उन्हें फिर से मौका देता है। यिर्मयाह की पुस्तक 3:2 में लिखा है, मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा का अर्थ यह नहीं कि किसी मूर्ति को दंडवत करना। मनुष्य किसी भी बात में अपना तन मन लगा दे, वही मूर्ति पूजा है। बाइबल तो लालच को भी मूर्ति पूजा कहती है, क्योंकि मनुष्य जिस वस्तु की लालच करता है उसी में वह अपना समय और जान लगा देता है, वह पूरी तरह उसके अधीन हो जाता है। इन दिनों हम बहुत लोगों के पाप के प्रति समर्पित हैं और उसमें लगाई जाने वाली उनकी शक्ति भी विस्मय में डाल देती है। परंतु आप देखेंगे कि मनुष्य जिस पल परमेश्वर से दूर होता है उसी पल वह किसी न किसी बात की ओर फिर जाता है। यह उसके मस्तिष्क की उपज होती है और वही उसका देवता बन जाता है, उसकी मूर्ति बन जाती है। डॉक्टर जी कैम्बेल मॉर्गन ने मूर्ति पूजा के स्वभाव और परमेश्वर की आराधना के बारे में अति उत्तम बात कहा है। मनुष्य जब अपने ही स्वभाव के अनुरूप एक प्रतिमा की रचना करता है तब वह अपने ही भूल चूक का एक बड़ा रूप तैयार करता है। इसके अतिरिक्त जब वह अपने लिए एक प्रतिमा तैयार कर लेता है तो उसकी मांग मनुष्य के पुराने स्वभाव की ही होती है। मनुष्य उन प्रतिमाओं के साथ निष्ठा निभाता है जो उससे वही चाहते हैं जो उसके अपने मन की लालसाओं से अलग ना हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है तो उसकी बुलाहट पवित्रता के लिए परमेश्वर की है, शुद्धता के लिए परमेश्वर की है, प्रेमी परमेश्वर की है, और वह चाहता है कि मनुष्य उसके ऊंचे स्तर तक आ जाए। परमेश्वर मनुष्य के भ्रष्ट स्तर पर आकर निर्वाह नहीं कर पाएगा। वह मनुष्य की अशुद्ध तथा दुष्ट कामनाओं से सहमत नहीं होता है। वह मनुष्य को ऊंचा उठाना चाहता है जब तक कि वे सिद्धता की चरम सीमा उसकी पवित्रता की समानता में न आ जाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है तो पहले वह शुद्ध तब शांति की, पहले पवित्र तब हर्ष, पहले धार्मिकता तब आनंद की बात कहता है। परमेश्वर कहता है कि यिर्मयाह की पीढ़ी यहूदा में पूरे मन से मूर्ति पूजा में लीन थी और उसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण देश में अनैतिकता व्याप्त हो गई। मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख तो आपको समझना होगा कि वहां कैसी घोर अनैतिकता व्याप्त थी। ये मुंडे टीले वे स्थान थे जहां वृक्ष कुंज थे और वहां मूर्तियों की वेदियां बनाई गई थी, जहां हर प्रकार की रंग रैलियां और मद्यपान आदि का निरंकुश उपयोग था। यहूदा बहुत ही अधिक पतित हो गया था। जी हां, आज हम चारों ओर कैसी नियम विरोधी प्रवृत्ति, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि व्यक्त बातों को देखते हैं। हमारे बच्चों को भी हम गलत शब्दों के प्रयोग से नहीं रोक रहे हैं। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 3:3 में, इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। परमेश्वर कहता है कि वर्षा रोक कर तो उसने उन्हें दंड देना आरंभ कर दिया है। वह देश आज भी सूखा है, उनकी आज की मुख्य आवश्यकता तेल से अधिक पानी की है। नेगेब में उन्हें तेल के स्थान पर पानी मिला जो उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब यहूदी परमेश्वर की आशीषों में स्वदेश लौटेंगे तब उन्हें आवश्यकता का पूरा पानी मिलेगा। परमेश्वर ने कहा कि वह आपूर्ति करेगा। हमें भी देखना है कि हमारे अपदाएं कहीं परमेश्वर का दंड तो नहीं। हमें जागना है और परमेश्वर के निकट आना है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि यशिया के राज्य में पथ भ्रष्ट होने का दोष। अब हम यिर्मयाह के दूसरे संदेश को पढ़ेंगे जो 3:6-6 परमेश्वर उन पर भटकने का आरोप लगाता है और इस अध्याय में भटकने का उपयोग 7 किया गया है जो संपूर्ण पुस्तक में भटकने के प्रयोग के आधे से अधिक है। यिर्मयाह में हम इस शब्द का उपयोग संपूर्ण बाइबल से अधिक पाते हैं। यिर्मयाह और होशे दोनों ही इस शब्द का उपयोग करते हैं। होशे 4 अध्याय उसके 16 पद से स्पष्ट होता है कि भटकने से उसका अभिप्राय क्या है। इसराइल ने हठीली कलोर के समान हट किया है। क्या आपने कभी बछड़ों को ट्रक में चढ़ाना देखा है? मेरा एक पड़ोसी मवेशी पालता था। मैंने देखा है कि जब बछड़ों को रपटे पर से ट्रक पर चढ़ाया जाता है, तब वे अपने आगे के पैर ऐसे अड़ा देते हैं कि उन्हें ऊपर खींचना कठिन हो जाता है। वे पीछे की ओर खिसकने लगते हैं। परमेश्वर के कहने का अर्थ यही है। भटकने का अर्थ है परमेश्वर के मार्ग पर चलने का विरोध, उसकी वाणी सुनने से इनकार करना। जब हम अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आड़े ले आते हैं, तो हम पिछड़ने लगते हैं और उससे अधिकाधिक दूर होते जाते हैं। हम यिर्मयाह 3 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाले इसराइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। परमेश्वर यहूदा को कहता है कि वे इसराइल को देखकर सीखें। उन्होंने भी ठीक वही किया जो यहूदावासी कर रहे थे, और अंत में हुआ यह कि वे बंधुआई में ले जाए गए। इसराइल ने हठीली कलोर के समान हट किया है। परमेश्वर ने इसराइल को लौटा ले आने के लिए भरसक प्रयास किया, परंतु वे लौटे नहीं। अंत में वे दासत्व में, गुलाम में चले गए। इसराइल के साथ जो हुआ उसे चेतावनी समझकर यहूदा अपना सबक सीख ले, परंतु उसने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, इस अध्याय के प्रथम पद में यहोवा ने कहा था, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? वह कहता है, तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? यही कारण है कि उड़ाओ पुत्र, उड़ाओ पुत्री, उड़ाओ परिवार, उड़ाओ कलिसिया, उड़ाओ देश परमेश्वर के पास आ सकता है। परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा। वह आपका इंतजार कर रहा है। आप चाहे कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, आपका इंतजार कर रहा है। वह कहता है, क्या तू मेरी ओर फिर लौटकर आएगा? उड़ाओ पुत्र को घर लौटने के बाद ताड़ना नहीं मिली। उसकी ताड़ना परदेश में हुई थी। घर आने पर तो उसे चूमा गया था। परदेश में तो वह भूखा था। घर लौटने पर उसके पिता ने उसके लिए भोज का आयोजन किया था। परंतु इसराइल परमेश्वर के पास नहीं लौटा। वह मूर्ति पूजा में ही रहा और परमेश्वर ने उसे दासत्व में भेज दिया। अब वह यहूदा से कहता है, सबक सीख लो, अभी भी मौका है। यिर्मयाह 3 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी। परंतु वह ना फिरी और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। परमेश्वर कहता है, मैंने इसराइल को एक अवसर दिया कि मेरे पास लौट आए, मैं उसे ग्रहण कर लेता, परंतु वह नहीं आई और उसकी विश्वासघाती बहन ने देखा। इसराइल का पाप उसने देखा और मेरे विचार में उनका दासत्व उत्तरी 10 गोत्रों से अधिक बुरा था, जिसका कारण प्रत्यक्ष है। यहूदा के समक्ष इसराइल का बंदी बनाया जाना था। उन्होंने उससे सीखने की अपेक्षा उसे अनदेखा किया। कई बार हमारे जीवन में जब हम दूसरों को देखते हैं कि कोई पाप कर रहा है, तो हम उसे देख करके हम उसे सबक नहीं लेते, परंतु स्वयं भी उसी पाप को करते हैं। और यही काम यहां पर इसराइल के साथ यहूदा ने भी किया। हम कहते हैं कि हमें बाइबल पढ़ने की स्वतंत्रता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु क्या हम वास्तव में बाइबल पढ़ रहे हैं? कितने लोग सच में बाइबल अध्ययन करते हैं? यहूदा के सामने इसराइल का उदाहरण था, परंतु उन्होंने सबक नहीं सीखा। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है और मेरे विचार में परमेश्वर हमें साम्यवादी राष्ट्रों से अधिक दंड देगा। मेरे विचार में परमेश्वर हमारा न्याय हमें दिए गए अवसरों के आधार पर ही करेगा। यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया, उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए कि उसने काठ और पत्थर के साथ भी व्यभिचार किया। उन्होंने काठ और पत्थरों से मूर्तियां बनाई थी। यर्मिया 3:10 में आगे लिखा है, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यही वाणी है। योशियाह के सुधार से निसंदेह जागृति आई थी। अनेक जन परमेश्वर की ओर फिरे थे, परंतु वह इतनी अधिक व्यापक थी कि अनेकों के लिए वह केवल बाहरी दिखावा ही था। समग्र रूप से तो वह परमेश्वर के साथ सतही अनुभव मात्र था। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर के वचन में नई रुचि है और मेरे विचार में आज पूर्व की तुलना में अधिक लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, परंतु हमें सावधान रहना है। यह जागृति नहीं है, यह अधिकतर सतही है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों के आंकड़ों को देखकर धोखा ना खाएं। इन आंकड़ों को 2 लगाकर सच्चे विश्वासियों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। हम सच्चे मन परिवर्तन और सतही दिखावे दोनों को देख सकते हैं। कहने का अर्थ है सच्चे विश्वासी और नकली विश्वासी। यर्मिया 3:11 में कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इसराइल विश्वासघातीन यहूदा से कम दोषी निकली है। परमेश्वर स्पष्ट करता है कि यहूदा का पाप इसराइल के पाप से अधिक गंभीर है, क्योंकि उत्तरी गोत्रों के पास दक्षिणी गोत्रों के बराबर अवसर नहीं थे। उनके पास ना तो मंदिर था और न ही मूसा की व्यवस्था थी। इस कारण यहूदा का दंड भी अधिक गंभीर होगा। मेरे विचार में हमारा दंड भी अधिक गंभीर होगा। यर्मिया की पुस्तक 3:12 में लिखा हुआ है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इसराइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। आज की एक बड़ी समस्या है पाप का अंगीकार न किया जाना। मैं देखता हूं कि आज के आत्मिक अभियानों में मन फिराव की कमी है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें लेखक का संपूर्ण बल मैं और मुझ पर था और परमेश्वर का महिमान्वन कहीं नहीं था। परमेश्वर ने उसे कैसे करोड़पति बनाया, कैसे वह सफल मनुष्य बना था। मैंने कहीं नहीं पाया कि वह कहता हो परमेश्वर ने उसे पापों से बचाया। हमें अपने अपराधों को स्वीकार करना है। मेरे मित्रों, क्या आप कहते हैं कि आप मसीही विश्वासी हैं? आपके कहने का अर्थ क्या है? आप कहेंगे कि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है। आपने उसमें किस बात का विश्वास किया है? आप कहेंगे कि आप उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। मैं यह सुनकर प्रसन्न हूं। क्या उसने पापों से आपका उद्धार किया है? स्मरण रखें कि आपको पापों से बचाने के लिए ही उसने क्रूस पर जान दी थी। आपको नया व्यक्तित्व देने के लिए ही वह क्रूस पर चढ़ा था, ना कि आपको एक करोड़पति बनाने के लिए। मेरे मित्रों, वह हम सबों को पापों से बचाने के लिए क्रूस पर मरा था। वह हमारे अपराधों के कारण मारा गया था। वह हम सब को परमेश्वर के निकटता में लाने के लिए मरा था। हम सब परमेश्वर के विरोधी थे। यर्मिया के द्वारा परमेश्वर का वचन है, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई है। यह यहूदा के साथ साथ हमारे लिए भी है। परमेश्वर का वचन आज हम सबसे भी कहता है कि सिर्फ अपने पापों को मान ले और प्रभु के पास आ जा और आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। यर्मिया की पुस्तक 3:14 में लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। यर्मिया की पुस्तक 3:15 में लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मेरे मित्रों, यदि आपका पास्टर बाइबल शिक्षक है तो उसे तुरंत गले लगाओ आपको उसकी रक्षा करना है क्योंकि वह अनमोल है। ऐसे सेवक बहुत कम हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 3:16 में लिखा है, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की यह भी वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। उन दिनों में प्रभु राज में यिर्मयाह की संपूर्ण पुस्तक में हम यह प्रकाश की किरण देखेंगे। क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? यिर्मयाह की संपूर्ण पुस्तक में आप बादलों से निकलता इंद्रधनुष देखेंगे, अर्थात भविष्य की महिमामय भविष्यवाणियां आप पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 3:17-18 में लिखा है, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया है। यह एक महिमामय भविष्यवाणी है जैसे अनमोल रत्न। तब हम आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह 3:19 में, मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी। तू मुझे पिता कहेगी, परमेश्वर इसराइल जाति का पिता था। निर्गमन के पुस्तक 4:22 में परमेश्वर इसराइल को अपना पुत्र कहता है। वह किसी एक इसराइली का पिता नहीं था। भजन संहिता 89:3 में परमेश्वर दाऊद को अपना दास कहता है, पुत्र नहीं। यहोशू के पुस्तक 1:2 में उसने मूसा को भी अपना दास कहा था, पुत्र नहीं। अनुग्रह के इस युग में यह हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने पुत्र होने का अधिकार दिया, वे जो उस पर विश्वास करते हैं न कम न अधिक उसके पुत्र बन जाते हैं। क्या वह पापों से आपका उद्धार करता है? यदि वह है तो आप पापों से मुक्त पापी ही नहीं परमेश्वर की संतान हैं। यह कैसी महान बात है। यिर्मयाह की पुस्तक 3:22 में लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर कहता है कि वह चंगा करेगा। यदि आप बहुत अधिक भटक रहे हैं तो आपके पांव में घाव हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 3:23 में आगे पढ़ते हैं, निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है, इसराइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। भजन 121 में दाऊद कहता है 1:2 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सहायता पर्वतों ऊंचे स्थानों से नहीं परमेश्वर से प्राप्त होती है, वही उद्धार करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 3:25 में लिखा है, हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। यहूदा ने पापों का अंगीकार नहीं किया, यिर्मयाह ने अपने और यहूदा के पापों का अंगीकार किया। यदि हम आज अपने पापों का अंगीकार करें तो हमें कष्ट नहीं होगा। हम विशेष दानों और परमेश्वर के आशीषों के बारे में सुनते हैं, यह अद्भुत बात है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है क्योंकि उसने हमें आशीषें दी हैं। परंतु आपने कभी यह अंगीकार सुना है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं? क्या आपने कभी उससे कहा है कि आप उसकी महिमा से कितने रहित हैं? हमें उसके समक्ष दीन होने की आवश्यकता है। यहूदा परमेश्वर के समक्ष दीन नहीं था, अतः परमेश्वर को उन्हें दासत्व में भेजना पड़ा। तो मैं कई बार सोचता हूं कि क्या परमेश्वर हमारी ताड़ना की तैयारी कर रहा है। हमें उसके समक्ष आज ही दीन होना है। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हम सब के लिए बहुत स्पष्ट है, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और वह इस इंतजार में है कि कब हम अपने पापों से फिरकर उसके पास आ जाएं। वह चाहता है कि हम दीन बने, अपने पापों को मान लें, अपने गलतियों को स्वीकार करें और उसके निकटता में आकर उससे क्षमा मांगें, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। उसने अपने बेटे प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा है और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए, ताकि हम उस भयानक मृत्यु से बच जाएं। जो दंड मुझे मिलना चाहिए, जो दंड आपको मिलना चाहिए, जो दंड हम सबको मिलना चाहिए, उस दंड को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर में उठा लिया। और आज परमेश्वर कहता है कि दीन बनकर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपको उद्धार प्राप्त हो जाए, आप शांति और आनंद को प्राप्त करें? मेरे प्रियो, आज यह समय है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के वचन ने आपके जीवन से बातचीत किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे।